बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अंदाज़े जहां के साथ मोहम्मद मेहदी शराफ़त हाज़िर है और आज हम अंदाज़े जहां में ईरान में जुमे के रोज़ होने वाले पार्लियामानी इंतखाबात के तनाजुर में गुफ्तगू करेंगे। हमारा ईमेल एड्रेस है andaz_jahan@sahartv.ir और हमारी वेबसाइट का पता है urdu.sahartv.ir। जी नाज़रीन, जुमे को ईरान में नवे पार्लियामानी इंतखाबात हो रहे हैं। 290 पार्लियामानी नशिस्तों के लिए 3,000 से ज़ायद उम्मीदवार मैदान में हैं। ईरान में इस्लामी इनकलाब आने के बाद से अब तक तकरीबन 30 इंतखाबात हो चुके हैं। ईरान में इंतखाबात की एक खसूसियत यह भी है कि तकरीबन हर इलेक्शन के मौके पर साम्राज्य महाज ने पूरी कोशिश की है कि अवाम को इंतखाबात में शिरकत से बाज रखे, और इस बार भी ईरान के खिलाफ प्रोपेगेंडों में उसकी पूरी कोशिश यही है कि अवाम को पोलिंग स्टेशनों से दूर रखा जाए। इस मौजू पर गुफ्तगू के लिए आज हमने तेहरान स्टूडियो में आने की दावत दी है सियासी उमूर के माहिर अली शहबाज साहब को, और इसके साथ ही लंदन स्टूडियो में आने की दावत दी गई है बर्रे सगीर के मुमताज दानश्वर डॉक्टर अली जाफर जैदी को, और दिल्ली स्टूडियो में हिंदुस्तानी कम्युनिस्ट पार्टी के मरकजी रहनुमा शमीम फैजी साहब को आने की दावत दी गई है। गुफ्तगू का आगाज करते हैं अली शहबाज साहब से, जो तेहरान स्टूडियो में मौजूद हैं। शहबाज साहब, स्टूडियो में आपका खैर मकदम है।
शुक्रिया।
नवे पार्लियामानी इंतखाबात के ताल्लुक से
जी,
ईरानी अवाम का जोश व जज्बा कैसा है?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नाज़रीन की खिदमत में सलाम अर्ज करता हूँ। जैसा कि आपने इशारा किया कि ये तकरीबन जो है 30वां पार इलेक्शन है ईरान में, हमगीर इलेक्शन है, मुलगीर इलेक्शन, और जो है अवाम में जोश व खरोश है, और जो है 3,000 से 100 कुछ चिल्लर कैंडिडेट्स उसमें जो है शिरकत कर रहे हैं 290 नशिस्तों के लिए। और चौतरफ ईरान के आप जिस महल्ले में चले जाइए, तेहरान के या किसी और शहरों में, वहाँ पर जो है कैंडिडेट्स के तस्वीर लगे हुए हैं, और उनके जो है जो कारनामे हैं, और जो उनके जो प्लान्स है, प्रोग्राम्स वगैरह है जो लोग पेश करना चाह रहे हैं अवाम को, और कानून के मुताबिक जो है इनको हक है, इख्तियार है कि अवाम में तबलीगात वगैरह करें, और अवाम भी जो है बड़ी तेज़ी से इसका बड़ी बेचैनी से इसका इंतज़ार कर रहे थे, और वो भी जो है आमादा है वोट वगैरह डालने के लिए। चुनाच एक अहम चीज़ जो शराफत साहब ईरान के इंतखाबात में है, ये तकरीबन ये 33 साल से यही जो है हमेशा जो है जिस किस्म के भी इंतखाबात हो, या जो है प्रेजिडेंशियल इलेक्शंस हो, या मसलन पार्लियामेंट्री इलेक्शंस हो, या काउंसिल ऑफ एक्सपर्ट्स वगैरह की इलेक्शंस हो, या हत्ता के जो है असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स के लिए, या लोकल काउंसिल के लिए रेफरेंडम हो, यहाँ पे जो है अवाम में जो खरोश है, क्योंकि यहाँ की हुकूमत अवामी हुकूमत है, अवाम के वोट की बिना पर वजूद में आई है। चुनाके हमारे नाज़रीन को खूब वाकिफ याद होगा कि इनकलाब इस्लामी की कामयाबी के तकरीबन कुछ 1-1.5 महीने के अंदर ही इमाम खुमैनी के दस्तूर से यहाँ पर रेफरेंडम हुआ था, और रेफरेंडम में जो है तकरीबन 90-67 के ऊपर आदमी जो है शिरकत किए थे, और उन्होंने जो है राय दी थी जमहूरी इस्लामी के क़याम के लिए। उस बार से उस रोज़ से अवाम में जो है जोश खरोश जारी है, जब भी इलेक्शन होते हैं वो कसरत से आते हैं, और उसके बरखिलाफ़ अमेरिका का और जो सहूनियों का और वो हल्के जो दुश्मना ने जमहूरी इस्लामी ईरान और नहीं चाहते कि ईरान के अवाम शिरकत करें, उनका भी जो है भरपूर प्रोपेगेंडा होता है। और हर जब भी इलेक्शन होते हैं, इसके पहले आप देखिए कि तकरीबन 3 साल पहले जून 2009 में प्रेजिडेंशियल इलेक्शंस हुए थे, जिसमें जो है डॉक्टर अहमदनजाद दोबारा जो है इसमें कामयाबी हासिल की है, उस मौके पर तकरीबन जो है 84% आदमी जो है शिरकत की है। और इस बात की दलील है कि यहाँ का निज़ाम जो है ना حکومت کے عوام کے سپورٹ پر باقی ہے. عوام میں اور سسٹم میں اس قدر گہرا جو ہے جوڑ ہے کہ اس کو کسی قسم کا پروپیگنڈا, کسی قسم کے جو ہے تحریمات جس کو سینکشنز کہا جاتے ہیں, کسی قسم کی حتیٰ کہ جنگ بھی جو ہے اس کو جو ہے توڑنے سے کی ہو رہا ہے. حتیٰ کہ دیکھ لیجئے آپ کے زمانے میں جب 1980 سے 1988 آٹھ سال کا دوران آٹھ سالہ جنگ ایران پر جو نافذ کی گئی تھی, تحمیل کی گئی تھی, اس جنگ کے دوران بھی جو الیکشنز ہوئے 1981 میں پریزیڈنشل الیکشنز ہوئے بنی صدر کے فرار ہونے کے بعد, اس میں بھی جو ہے آیت اللہ خامنہ ہی کامیابی حاصل کیے, بہت ہی ریکارڈ پرسنٹیج تھا, یعنی جنگ کے باوجود بھی گرتے ہوئے بوموں میں اور مسائل میں بھی لوگ شرکت کیے. اس پارلیمنٹری الیکشنز ہوئے, اس بھی لوگوں کا جو ہے جوش و خروش تھا. جنگ ختم ہو چکی, ریکنسٹرکشن کا جو ہے دور اسٹارٹ ہوا, اس میں بھی جو ہے عوام جو ہے ویسے جو ہے ہاتھ بٹائے اپنا ملک کی تعمیر کے لیے, ملک کی ترقی کے لیے. اور یہ بات ثبوت یہ بتا دیے کہ ایران کا جو نظام ہے, سسٹم ہے, اس قدر جو ہے عوام پر منحصر ہے کہ کسی قسم کی طاقت, کسی قسم کا پروپیگنڈا اس کو جو ہے توڑ نہیں سکتا. اور امریکہ جو ہے ناکام کوششوں میں ہے, اور امریکہ کو خود معلوم ہے. اچھا, اس کے برخلاف امریکہ کو دیکھ لیجیے آپ, امریکہ میں جو الیکشن ہوا کرتے ہیں یا کسی اور مغربی ممالک میں, تقریباً جو ہے 40% یا مثلاً 45% اس سے زیادہ لوگ جو شرکت ہی نہیں کرتے, 50 سے کمی ہوا کرتے ہیں پرسنٹیج. اس کے برخلاف ایران میں جو ہے, کیونکہ یہاں پہ جو ہے ایک چیز جو ہے شفافیت ہے عوام کے اور جو حکومت کے درمیان, یہ شفافیت کی بنا پر لوگوں کو معلوم ہے کہ کس کینڈیڈیٹ کو ووٹ ڈالنا چاہیے اور کس کینڈیڈیٹ کیا ہمارے لیے جو ہے کارنامے انجام دیں گا, ہمارے ترقی کے لیے, محلے کی ترقی کے لیے, شہر کی ترقی کے لیے, ملک کی ترقی کے لیے, اور کس محاذ پہ ہمارے کو ثابت قدم رہنا چاہیے. تو یہ اسی لیے عوام کی جو ہے بھرپور تائید ہے. اچھا, اور ایک خاص بات یہاں بتاتا چلوں کہ ایران کی جو 290 نشستیں ہیں ایران کی پارلیمنٹ میں, اس میں یہاں کی جو اقلیتیں ہیں ان کو بھی تو حق و حقوق دیے گئے ہیں برخلاف دوسرے ممالک کے. آپ دیکھ لیجئے ایران میں جو ہے مسیحی, جس کو عیسائی کہتے ہیں, کرسچنز کہتے ہیں, ان کا پرسنٹیج بہت ہی تھوڑا ہے, لیکن جو ان کے چار نمائندے یہاں پہ جو ان کو حق رکھتے ہیں کہ جو ہے الیکشن وغیرہ میں کھڑے رہنے کا اور ان کی قوم کی نمائندگی کرنے کا, ان کی جو قوم وغیرہ ہے, خواہ جلفا میں ہو یا اصفہان میں ہو یا تہران میں ہو, کسی جگہ پہ ہو, اس کے برخلاف جو ہے خود پارسی, جو ہندوستان میں پاکستان پارسی کہا جاتے ہیں لیکن یہاں کی اصطلاح میں زرتشتی, جو قدیم آئین کے قدیم ایران کے آئین وغیرہ ان کے نمائندے ہوتے ہیں, حالانکہ ان کی جمعیت جو ہے میرے خیال سے 30,000 سے زیادہ نہیں ہے, لیکن ان کا حق ہے کہ اپنے نمائندوں کو کھڑا کرنا, اور نمائندہ جو ہے ان کی نمائندگی کرتا ہے اور ان کے جو ہے مسائل کے حل وغیرہ کرتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ دیکھ لیجیے آپ, ایران میں جو ہے 25,000 یہودی رہتے ہیں اور یہودیوں کو جو ہے بالکل کامل طور پہ حق ہے. ایسا نہیں کہ ایران میں کوئی یہودیوں کے خلاف کسی قسم کی سازش ہو وغیرہ یا دباؤ ہو یا مثلا ریسٹرکشن, نہیں نہیں بالکل نہیں, بلکہ سب میں زیادہ جو ہے یہودیوں کی جمعیت فلسطین مقبوضہ کے بعد کہا جاتا ہے کہ ایران میں ہے, اور ان 25,000 یہودیوں کو پورے حق و حقوق حاصل ہیں, حتیٰ کہ ان کا نمائندہ جو ہے یہ پارلیمنٹ الیکشن میں کھڑا ہوتا ہے اور اپنی طرف کی اپنی قوم کی نمائندگی کرتا ہے, الیکٹ ہوتا ہے, اور ان کے نمائندے بھی جو ہے اس میں اہم چیز یہ ہے کہ وہ اسرائیل سے جو ہے بیزاری کا اظہار کرتے ہیں, کیونکہ جانتے ہیں کہ جو ہے ایران میں یہودی تقریباً 2,500 سال سے آباد ہیں, یہاں پہ ایرانی ہیں وہ, اور یہیں پہ جو ہے ان کے آبا و اجداد وغیرہ رہے تھے, وہ خوب جانتے ہیں کہ اسرائیل جو ہے بالکل ایک مصنوعی ملک ہے اور وہاں کے یورپ کے جو یہودی ہیں ان کو زبردستی لا کر وہاں بسا کر کام کیا گیا ہے, لہٰذا وہ کسی قسم کی جو ہے اسرائیل کی تائید نہیں کرتے اور وہ اس کے برخلاف جمہوری اسلامی ایران کی تائید کرتے ہیں. اب اس تناظر میں امریکہ کا جو پروپوگنڈا ہے یا مغربی پریس کا جو پروپوگنڈا ہے وہ بے فائدہ ہے اور جو ہے کوئی اثر ہونے والا نہیں ہے اس کا.
جی, بہت بہت شکریہ شہباز صاحب. اور چلتے ہیں دہلی اسٹوڈیو, جہاں ہندوستانی کمیونسٹ پارٹی کے مرکزی رہنما شمیم فیضی صاحب موجود ہیں. فیضی صاحب, السلام علیکم جناب. فیضی صاحب, میری آواز آ رہی ہے آپ تک؟
وعلیکم السلام.
جی فیضی صاحب, کسی بھی ملک میں پارلیمانی انتخابات کی اہمیت کیا ہوتی ہے؟
جی, دیکھیے کسی بھی ملک کا پارلیمانی انتخاب, وہاں کس قسم کا نظام حکومت ہو, کیسی حکومت ہو, عوام کیا چاہتے ہیں, اس کے اظہار کا ایک طریقہ ہوتا ہے.
جی,
اور عام طور سے بیرونی مبصرین کے لیے صرف دلچسپی اس حد تک ہوتی ہے کہ یہ انتخابات کس حد تک شفاف ہیں, کس حد تک عوام کی نمائندگی کرتے ہیں. لیکن فی الوقت ایران میں جو انتخابات ہونے جا رہے ہیں, شاید ان میں عالمی دلچسپی کچھ مخصوص حالات کی وجہ سے بڑھ گئی ہے.
جی,
اور سب سے نمایاں بات یہ ہے कि जिस तरह से पहले न्यूक्लियाई मामलात को लेकर ईरान को निशाना बनाने की कोशिश की गई, उसके ख़िलाफ़ एक ज़बरदस्त प्रोपेगेंडा मुहिम चलाई गई, उसके फौरन बाद जबकि इंतखाबात होने वाले हैं, ईरान को एक नया नाम देने की कोशिश की गई दहशतगर्दी का। हिंदुस्तान में भी उन्होंने एक वाक़े का इनेकाद किया जिसके बारे में कम से कम हिंदुस्तानी आवाम बिल्कुल साफ़ हैं कि ये कार्रवाई मोसाद और CIA की मिली जुली कार्रवाई थी। लेकिन दिल्ली के वाक़े के साथ ही साथ दो और मुल्कों की राजधानियों में भी इस किस्म की शरंगेजी की गई और ये कहने की कोशिश की गई कि अब दहशत अंगेजी को ईरान बढ़ावा दे रहा है। ऐसी हालत में आवाम की दिलचस्पी ईरान के इंतखाबात में बढ़ जाती है। इसका एक और पस मंज़र है कि ईरान के इंतखाबात को साम्राज्यी ताकतों ने हमेशा वहाँ अंदरूनी इंतशार फैलाने के लिए भी इस्तेमाल करने की कोशिश की है। और इस संदेश का जो इजहार किया जा रहा है कि इस मौके पर भी वो अपनी शरंगेजी से बाज नहीं आएंगे, उसकी वजह से भी आलमी मुबस्सरीन की तवज्जो ईरान के इन इंतखाबात पर मुंतकिल हुई है। पिछले सदारती इंतखाबात के वक्त जो तमाशा हुआ, जिस तरह से इंतखाबात को बदनाम करने की और अवाम में इंतशार पैदा करने की कोशिश की गई, उसके पेश नज़र अगर ये इस अंदेशे का इजहार किया जा रहा है कि अमरीकी और सहयोगी ताकतें एक बार फिर ऐसी कुछ कार्रवाई करने की कोशिश करेंगे, तो मैं इन अंदेशों को गलत नहीं मानता।
जी बहुत 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 शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया फैजी साहब। और चलते हैं लंदन स्टूडियो जहां बरसगीर के मुमताज़ दानश्वर अली जाफर जैदी साहब मौजूद हैं। जैदी साहब अस्सलाम वालेकुम।
जी वालेकुम सलाम।
जी जैदी साहब, जमहूरियत और डेमोक्रेसी के फ़रोग में इंतखाबात का किरदार क्या होता है?
जी जमहूरियत का मतलब ही जमहूर की चुनाव की हुई वो हुकूमत जो जमहूर की नुमाइंदगी करती हो। जमहूर अपनी जमहूरियत की बका के लिए अपनी हुकूमत में जाने वाले अफराद का इंतखाब करते हैं और पार्लियामेंट तश्कील पाती है, फिर उसके बाद हुकूमत बनती है और वज़रा और वज़ीर आज़म और सदर जो भी वहाँ का निज़ाम हो जिस मुल्क का। लेकिन असल बात जमहूर की अपनी चुनाव का अमल है जिसके नतीजे में जमहूरियत कायम होती है और जमहूरियत का इंस्टीट्यूशन बरकरार रहता है। ईरान की सूरत में 84% जैसा कि शहबाज साहब ने पहले कहा, इतनी बड़ी अक्सरियत अवाम की जमहूर की जिस हकूमत को चुनते हैं वो अगर अवाम की नुमाइंदा नहीं है तो फिर दुनिया में कोई भी हकूमत अवाम की नुमाइंदा नहीं तसव्वुर की जा सकती। जैसा कि पहले कहा गया, यूरोप में अमेरिका में 40% से ज़्यादा टर्नआउट नहीं होता और ये हुकूमतें अवाम की नुमाइंदा हुकूमतें कहलाती हैं और जमहूरियत की चैम्पियन भी हैं और जमहूरियत के फ़रोग के लिए, जमहूरियत के की बका के लिए, जमहूरियत को नाजिम नफाज करने के लिए दूसरे मुल्कों में जंगें भी मुसल्लत करती हैं और वहाँ की हुकूमतों को भी उलटती हैं, वो हुकूमतें जो उनकी पसंद की नहीं होती, और ये सब काम जमहूरियत की बका और वहाँ पर जमहूरियत के निफाज के नाम पर मग़रिब करता है। तो जमहूरियत को ऐसा गड़मड कर दिया है वेस्ट ने, अपने यहाँ बड़ा साफ रखा है और दुनिया में जहाँ जहाँ भी जमहूरियत की साफ शफाफ शक्लें हैं उसको वो एक्सेप्ट नहीं करते, इसलिए कि वो नतीजा जो ये चाहते हैं वो बरामद नहीं होता वो हुकूमत जो ये चाह रहे होते हैं उस तरह कायम जब नहीं होती तो फिर उसके बारे में प्रोपेगेंडा बिल्ड किया जाता है कि ये धांधली हुई है, ये अवाम ने नहीं चुना है, वगैरह वगैरह बेशुमार उसके पहलू निकलते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रेस जो प्रिंट मीडिया है और थ्रू अब तो फेसबुक और ट्विटर और सब के ज़रिए ये प्रोपेगेंडा फैलना शुरू हो जाता है कि ये हुकूमत जो है ये ठीक से नहीं चुनी गई। आपने देखा ये हम सब के सामने 2009 में जो अनरेस्ट पैदा की गई थी ईरान में वो वेस्ट की मास्टरमाइंड की हुई थी। वेस्ट ने इसको मास्टरमाइंड किया और वहाँ पर अनरेस्ट पैदा की गई। अच्छा, होता यह है कि हर माशरे में बहुत सा महदूद एक ऐसा तबका होता है जो जिसकी असल, जिसको मैं कहूँगा मिडिल क्लास, जिसके असल कदम तो गरीब अवाम में होते हैं लेकिन वो अपना मुंह उठाकर उमरा की तरफ देख रहा होता है और उसकी कोई लॉयल्टीज़ नहीं होती, वो मफाद परस्त तबका होता है। तो उस तबके के ज़रिए किसी भी मुल्क में फिसाद पैदा करना, इंतशार पैदा करना आसान होता है। और हमने, आपने सबने देखा कि तारीख में भी जहाँ जहाँ कहीं हंगामा आराई कराई गई उन्होंने ये मिडिल क्लास के उन अपॉर्चुनिस्ट अफराद को चुना और उनके ज़रिए उन मुल्कों में परेशानी पैदा की गई। लेकिन 84% अगर अवाम किसी भी हुकूमत को चुनते हैं तो उसके बाद वो महदूद सा तबका जिसके ज़रिए वेस्ट ने लास्ट टाइम भी कोशिश की थी हंगामा पैदा करने की, मैं नहीं समझता कि ईरान में इसकी कोई गुंजाइश है या ये मुमकिन हो पाएगा। कोशिश वो कर रहे हैं मीडिया के थ्रू, और मीडिया मैं समझता हूँ कि जो यहाँ वेस्ट में प्रोपेगेंडा आज कल से चला है कि ईरान ने इंटरनेट को रोक दिया है, बाहर के इंटरनेट और बाहर की जो वेबसाइट्स हैं वो बंद कर दी गई हैं, मैं समझता हूँ कि ईरान का ये हक है कि वो इस तरह की चीज़ों को रोके, क्योंकि ये ईरान के अवाम का मामला है, ईरान की हुकूमत का मामला है। बाहर की किसी भी ताकत को कोई ये हक नहीं पहुँचता कि ईरान के 84% जमहूर की राय को अपने मुताबिक ढालें। चुनाचे ईरान ने ये फैसला ठीक किया है और अपने अवाम को आज़ादी से इंतखाब में जाने की जो उन्होंने फिज़ा पैदा की है उसमें मैं समझता हूँ कि ईरान बहुत कामयाब रहा है और अवाम को ये पूरा हक हासिल होना चाहिए कि वो अपनी मर्ज़ी का चुनाव करें, अपनी मर्ज़ी के लोगों को सामने लाएं, और इसी का नाम जमहूरियत है।
जी बहुत बहुत शुक्रिया जैद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। शहबाज साहब, इस्लामी इंकलाब आने के बाद अब तक कितने इंतखाबात हुए? अच्छा, इससे पहले एक बात मैं पूछना चाहूँगा, जैदी साहब ने जो इशारा किया है इस प्रोपेगंडे की तरफ कि ईरान में इंटरनेट को काट दिया गया है और बाहर की जितनी भी साइटें हैं उनसे राबता मुनकता हो गया है
जी,
तो इसकी क्या हकीकत है?
देखें, ये तो जो है कुछ महदूदियत तो जो है होना चाहिए सिक्योरिटी के लिए, चुनाचे देखे होंगे आपके आवाम के तहफ़ के लिए, आवाम के जो है हकूक़ों की सलामती के लिए हर हुकूमत का हक है कि अपने आवाम को महफूज रखें, और ख़ासतौर पर ऐसे जहरीले प्रोपोगंडे से जो वेस्ट की तरफ से लगातार जो हुआ करता है। अब आजकल का जो भी नहीं, आप उठा के आप जो है 30 साल पहले देख लें, वो ज़माना तो इंटरनेट नहीं था, लेकिन अखबार में रेडियो के ज़रिए से, टेलीविजन के ज़रिए से हमेशा अमेरिका की यही कोशिश रही है कि ये ईरान को जो है बिल्कुल जो है कमरंग बनाए, ईरान के इंतखाबात को, और ये कोशिश करें कि जो है ईरान में जो है आवाम का हकूक हासिल नहीं है, लेकिन उसके बरखिलाफ़ जो है ईरान जो है आगे चलते जा रहा है, तरक्की करते जा रहा है। अभी आप देख लीजिए, यानी 11 फरवरी को जो 202 महमन ईरान में थी, तो सालगिरह थी इनकलाब इस्लामी ईरान की, 33वीं सालगिरह थी, उस मौके पर भी जो है बावजूद इस प्रोपेगंडे के तकरीबन जो है 10 मिलियन अफराद यानी वो निकल के आए सड़कों पर और तो अपने हिमायत का ऐलान किए, इजहार हिमायत किए। तो लिहाजा बकौल रहबर मौज़म इनकलाब ईरान आयतुल्ला सैयद अली खामेनेई, उन्होंने बहुत अच्छा बयान दिया, कहा कि जो है इस जुमे के दिन ये तवक्को रखना चाहिए कि इससे ज़्यादा ज़ोरदार जो है लोगों की जो है क्या कहेंगे आप अपने हक़ को हुकूक हासिल करने का मुजाहरा होगा। तो यह बात बड़ी बहुत बड़ी दलील है कि जो है जहां तक इंटरनेट का मसला है कि ईरान जो है वो चाह रहा है कि अपना एक इंटरनेट सिस्टम पैदा करें, क्योंकि ईरान का असल मकसद ये है, क्यों अपने जो ईरान जब इतने कई शोबों में तरक्की कर चुका है, पेशरफ्ती कर चुका है, खासतौर पर जो है मिसाइल टेक्नोलॉजी में, स्पेस टेक्नोलॉजी में, नैनो टेक्नोलॉजी में, हर किस्म की टेक्नोलॉजी, एरोस्पेस में, तो ईरान चाहता है कि ईरान का खुद इंटरनेट सिस्टम हो, क्यों जो है वो अमरीका के ऊपर डिपेंड रहे, क्यों जो है यूरोप के ऊपर डिपेंड रहे। अब जो कहा जाता है कि इंटरनेशनल सिस्टम ये अमरीका के हाथ में है, इसकी बागडोर ये जो है कोई आखिर जो इंटरनेशनल सिस्टम नहीं है जिसमें दुनिया के हर ममालिक इसमें शामिल हैं या उसको जो है इसमें उनका हिस्सा है या जो है आजादाना तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर देखा जाए तो इसकी बागडोर जो याहू है, गूगल है, हॉटमेल है, ये साइट्स पूरे अमरीका के हाथ में है। तो किसी भी मुल्क अपनी सिक्योरिटी की वजह से हिफाजत करने की नहीं चाहता कि जो है अपनी सिक्योरिटी जो है आम हो जाए या मसलन जो है लोगों को मौका मिले कि इसमें मदाखलत करके यहाँ पे जो है इंतशार या खलफशार पैदा किए। तो ईरान को हकों को हासिल है, लेकिन उसके बावजूद आवाम को जो है पूरी आज़ादी है। ईरान का खुद जो है इंटरनल नेटवर्क है जो .net के IR.net वगैरह से जो है काम करता है, और ईरानी आवाम जो है एक दूसरे राबिता रखते हैं और जो है किसी किस्म की कोई रुकावट वगैरह नहीं है। रहा आपका जो सवाल, आप कह रहे थे कि 30वां इलेक्शन है ये, और जो है आज तक जो है 33 साल में 30 इलेक्शन हुए हैं मुख्तलिफ किस्म के, जो है ये 9वां पार्लियामानी इलेक्शन से, अब तक जो है प्रेसिडेंशियल के इलेक्शन भी 9 हो चुके हैं, और इसके अलावा रेफरेंडम हुआ है ईरान में, और काउंसिल ऑफ असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स है जिसको मजलिस खबरागान कहा जाता है, उसके लिए इंतखाबात बरपा हुए हैं ईरान में, और जो है आपके जो सिटी काउंसिल वगैरह के लिए जो इंतखाबात हुए हैं उसमें मर्दों का जो है जोश खरोश होता है, आवाम का जोश खरोश होता है। एक बात और बात की तरफ इशारा करूँ, जो पहली गुफ्तगू में सामीन के सामने नाजिन सामने अर्ज नहीं करने के उसका काम है, रहा ईरान में जो अहल सुन्नत हैं उनको भी जो है हक हकूक पूरी तरह से उनके महफूज हैं यहाँ पे, खासतौर पर देखिए आपके सरहदी इलाकों पर सिस्तान बलूचिस्तान में, वहाँ पे अच्छी खासी तादाद जो है हमारे अहले सुन्नत बिरादरान अहले सुन्नत की आबाद है, या कुर्दिस्तान में जो इराक वराक के बॉर्डर के नज़दीक, या तुर्कमान सहरा जो तुर्कमेनिस्तान के बॉर्डर के नज़दीक है, तो वहाँ के आवाम को भी जो है अपने नुमाइंदों खड़ा करने का, इंतखाब करने का पूरा हक हासिल है, ताकि उनकी तरफ से पार्लियामेंट में नुमाइंदगी करें इलेक्शंस के बिना पर, और उनके हक हकों को महफूज करें, और जैसे वहाँ के उलमा हैं, वहाँ के जो है और जो बर्जिस्ता अफराद हैं वो हिस्सा ले सकते हैं। और आपकी इतला के लिए और नाजरीन की इतला के लिए, गुज़िश्ता जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हुए थे 3 साल पहले, सब में ज़्यादा वोट जो है सिस्तान बलूचिस्तान में डाले गए, जहाँ पे जो है अहले सुन्नत की एक अच्छी खासी तादाद है वहाँ पे। तो मेरा मतलब कहने का यह है कि जमहूरी इस्लामी ईरान ऐसा मुल्क है, ऐसा निज़ाम है जहाँ पे जो है आवाम के, ईरान के हर तबके का, हर कौम का ख्याल रखा जाता है, उसको नुमाइंदगी का पूरा हक है, और इसकी बिना पर जो है वेस्टर्न प्रोपेगेंडा बिल्कुल बेकार और नाकारा है। आप बताइए आप दूसरे ममालिक में जहाँ पे दूसरे जो मिलतें वगैरह आबाद हैं, बताए कितने हक हकूक है। कहा जाता है कि जर्मनी में जो है 6 मिलियन के तकरीब मुसलमानों की आबादी है, आया जर्मनी के 6 मिलियन मुसलमान यानी तकरीबन जो है 60 लाख मुसलमान, उनको हक हकूक है कि अपना कोई नुमाइंदा खड़ा करें पार्लियामेंट के लिए वहाँ की, ताकि उनकी नुमाइंदगी कर सके, नहीं। या बरतानिया में कहा जाता है कि 4 मिलियन मुसलमान है, या दूसरे और ममालिक में खुद, या खुद जो है इस्लामी ममालिक में देख लीजिए आप, क्या सऊदी अरब में कहा जाता है कि 25% शिया आबादी है, आया शिया आबादी को हक हकूक हासिल है कि वहाँ जो है अपनी नुमाइंदगी करें,
वहाँ तो इलेक्शन ही नहीं,
इलेक्शन नहीं होते वहाँ पे, हत्या कि आवाज तक नहीं उठा सकते आप। तो बताइए, तो इसका मतलब यह है कि ईरान के जो इंतखाबात हैं वो बिल्कुल साफ हैं, शफाफ हैं, फ्री हैं, फेयर हैं, और जो है आवाम का जोश खरोश हुआ करता है, और आवाम का जो है हर तबका, ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ अंग्रेजी में कहा जाता है, इसमें शिरकत करता है और अपने नुमाइंदों का इंतखाब करता है, बहस मुबाहसे होते हैं। हत्ता कि इसके पहले हमारे नाज़रीन को याद होगा कि प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के दौरान टेलीविज़न पर जो है मनाजरा वगैरह हुआ था कैंडिडेट ईरान, और बहुत ही जो है शफाफ और साफ तौर पर अभी भी जो है अपने अपने जो प्रोग्राम से लोग पेश कर रहे हैं। तो लिहाजा इस बात की दलील है कि जैसा कि आज कर चुका खिदमत में तो नाज़रीन की, कि आवाम में और निज़ाम में इस किस्म का जो है गहरा पैवस्त है, इसको अमेरिका का प्रोपोगंडा असर नहीं कर सकता, और अमेरिका की जो है नाकाम कोशिश है। अगर आप हिस्ट्री उठा के देख लें, तारीख उठा के देख लें, ईरान की 33 साल तारीख, हर वक्त जब भी इंतखाबात हुआ करते हैं ईरान में, अमेरिका के अखबारात, अमेरिका के रेडियो, अमेरिका का टेलीविज़न, अमेरिका की इंटरनेट सर्विस यही कहना चाहती है कि वहाँ की आवाम को आज़ादी हासिल नहीं है और लोग शिरकत नहीं करेंगे, लोग नहीं आएंगे, लेकिन उसके बावजूद भी जैसे सारी दुनिया, हत्ता कि वहाँ के रिपोर्टर्स आके जो है دیکھ چکے ہیں اور فلم برداری کر چکے ہیں. عوام کے جو ہے صفیں صبح سے لے کر شام تک لگی رہتی ہیں, حتیٰ کہ عوام کے جو ہے درخواست پر, ڈیمانڈ پر اس کی جو ڈیڈ لائن ہے, ڈیڈ لائن ٹائم جو ہے, ٹائم کو جو ہے وہ بڑھانا پڑا ہے. تو اس بات کی دلیل ہے کہ یہاں جتنی جو ہے عوام میں کی دخالت حکومت میں کسی اور ملک میں نہیں ہے. تو امریکہ کا کہنا کہ امریکہ جو ہے ڈیموکریسی کا علم بردار ہے, امریکہ ہیومن رائٹس کا علم بردار ہے, یہ سب جو ہے بکواس ہے اور کچھ نہیں. امریکہ چاہتا ہے کہ اس بہانے پہ مداخلت کریں, اور انشاءاللہ اس بار بھی امریکہ کو, جیسا کہ رہبر نے فرمایا ہے کہ امریکہ کے چہرے پر ایک بہت بڑی تماشا لگے گا, جو کہ امریکہ کو جو ہے سوائے شکست کے اور کچھ نصیب نہیں ہوگا.
جی بہت بہت شکریہ فیضی صاحب. جناب, انتخابات کے ذریعے ہی حاکمیت میں اور اقتدار میں عوام شریک ہوتے ہیں اور حکومت قائم کرتے ہیں. انتخابات جمہوریت اور ڈیموکریسی کا مظہر ہوتے ہیں, لیکن اس کی کیا وجہ ہے کہ ایران میں جب بھی الیکشن کا موقع آتا ہے تو امریکہ اور اس کے اتحادی, جو اپنے آپ کو جمہوریت اور ڈیموکریسی کا علمبردار کہتے ہیں, اپنے پروپیگنڈوں میں عوام کو الیکشن میں حصہ لینے سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں.
دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ کم سے کم میں نہیں مانتا کہ امریکہ اس وقت کسی بھی طرح سے جمہوریت کا علمبردار کہلا سکتا ہے. انہوں نے اپنے معاشی نظام کو تھوپنے کے لیے ایک دو پارٹی نظام وہاں قائم کر رکھا ہے. آپ اس سے ناراض ہو گئے تو ان کے جڑوا بھائی کو چن کر دے دیجئے, اور نظام لیکن جو ہے وہ وہی باقی رہے گا. اس کا مطلب عوام کے سامنے انتخاب کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے, اور جب انتخاب نہ ہو تو اس سے جمہوریت کہنا جمہوریت کی توہین ہوگی. پہلے تو یہ بات سمجھ لیں. اور مشکل یہ ہے کہ یہ صورتحال نہ صرف امریکہ میں بلکہ برطانیہ اور یورپ کے دوسرے ملکوں میں بھی ہے, جہاں دو پارٹی نظام کو تھوپنے کی کوشش کی گئی ہے. دو پارٹی نظام تھوپا گیا ہے, یہ انتخاب نہیں ہے. یہ تو ایک کو مارو دوسرے کو لے آؤ, دوسرے پریشان ہو جاؤ تو پھر اسے واپس لے آؤ. اسے کوئی میں جمہوریت ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں. پہلی یہ بات واضح ہو جانی چاہیے. دوسری بات یہ ہے جو آپ کے سوال کا دوسرا حصہ ہے کہ انتخابات تو عوام کے لیے ہوتے ہیں, اور اس کا فیصلہ اس بنیاد پر ہونا چاہیے کہ عوام کے کتنے فیصد نے رائے دہی میں حصہ لیا.
یقیناً
پہلے جعفری صاحب نے کہا, شہباز صاحب نے بھی کہا کہ یورپ کے بہت سے ملکوں میں 40% لوگ انتخابات میں حصہ لیتے ہیں, اور اسے یعنی ملک کی آبادی کی اکثریت انتخابات سے دور رہتی ہے, اس کے باوجود انہیں جمہوری انتخاب مان لیا جاتا ہے. یہ بنیادی طور پر غلط ہے. جب تک عوام کی اکثریت چناؤ میں حصہ نہ لے, اسے جمہوری انتخاب نہیں کہا جا سکتا. لیکن امریکہ کو پتہ ہے کہ کم سے کم ایران جیسے ملکوں میں عوام کی اکثریت کسے ووٹ دے گی کسے نہیں ووٹ دے گی, یہ ان کا اندرونی معاملہ ہے. وہ انتخاب میں ضرور حصہ لے گی, اس لیے کہ انتخاب جمہوریت کا جشن ہوتا ہے, انتخاب جمہوریت کی آزمائش ہے. اور جب عوام اسے سمجھ جاتے ہیں تو وہ اسے اپنی طاقت بھی مانتے ہیں. اس لیے ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ انتخابات کے ذریعے تو ہم اپنی کٹپتلیاں برتر اقتدار نہیں لا سکتے, جہاں لا سکتے ہیں وہاں وہ بھی کرتے ہیں, دھاندلی کرتے ہیں, باقی سب کچھ کرتے ہیں. لیکن جب انہیں یقین ہو جائے کہ انتخابات کے ذریعے ان کی کٹپتلیاں برتر اقتدار نہیں ہو سکتی, تو پھر وہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ عوام میں بدگمانی پیدا کی جائے, اور اگر بدگمانی سے بھی وہ نہیں رکتے ہیں تو انتشار, تشدد اور اس قسم کے حالات پیدا کیے جائیں کہ عوام انتخابات سے دور رہیں. یہ امریکہ کی ایک سوچی سمجھی سازش ہمیشہ سے رہی ہے. کئی ملکوں میں انہوں نے اپنایا ہے. ایران میں صدارتی انتخابات کے وقت بھی انہوں نے یہ کوشش کی, اور اگر یہ اندیشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ شاید پارلیمانی انتخابات کے موقع پر بھی عوام کو انتخابات سے دور رکھنے کے لیے دہشتگردی کے ذریعے دہشت پیدا کر کے، ایسا ماحول پیدا کر کے جس سے عوام انتخابات سے دور رہیں، اس کی کوشش وہ کر سکتے ہیں، اور یہ جمہوریت کی حمایت نہیں بلکہ یہ جمہوریت کی نفی ہے۔ جی
بہت بہت شکریہ۔ جی زیدی صاحب، جناب امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے پاس، جو خود کو وہ جمہوریت کے فروغ کا دعویٰ کرتے ہیں اور اس کا علمبردار اپنے آپ کو کہتے ہیں، انتخابات میں حصہ لینے سے عوام کو روکنے کا کیا جواز ہے؟
اس لیے کہ جو جی عوام حکومت چنتے ہیں، اگر وہ ان کی پسند کی حکومت نہیں ہے
جی
تو پھر وہ اس طرح کے انتخاب کو روکیں گے، اور اس کے لیے وہ ہر حربہ استعمال کرتے ہیں۔ اگر انتخابات کے نتیجے میں پرو امریکن حکومت قائم ہوگی تو انہیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ اگر ابھی مجھے تھوڑی دیر پہلے خبر ملی ہے
جی جی
کہ سعودی عرب اور بحرین کے امیر کے جی درمیان یہ بات طے پا رہی ہے کہ بحرین کو سعودی عرب کا حصہ بنا دیا جائے۔ اب بحرین کے جو عوام ہیں، جو جمہور ہیں، وہ وہاں کی حکومت کے خلاف یعنی پروٹیسٹ کر رہے تھے، اپنے اقتصادی سیاسی حق کا مطالبہ کر رہے تھے، کجا ان کو حق دینے کا جمہور کے مطالبے کو تسلیم کرنے کی بجائے ایک نئی بات چل پڑی ہے کہ اس بحرین کو سعودی عرب کا ایک ریاست کے طور پہ اس کو اس میں شامل کر دیا جائے۔ تو اب اور سعودی عرب میں کون سی جمہوریت ہے؟ تو امریکہ کو اس طرح کی صورتحال جو اس کے حواریوں کے لیے، اس کے اپنے مقاصد جو مفادات ہیں ان کے سامنے، جو بھی اس کے عزائم ہیں، اس کو جو حکومتیں سپورٹ کرتی ہوں، وہاں انتخاب نہ بھی ہوں تو وہ ڈکٹیٹرز ایکسیپٹیبل ہیں۔ اگر انتخابات وہاں اس امریکن رولنگ کلاس یا پینٹاگون کے حق میں جا رہے ہوں تو پھر وہ حکومت ٹھیک ہے، چاہے وہ دھاندلی سے حکومت میں آئیں۔ لیکن وہ حکومت جس کو عوام چنے اور وہ امریکہ کی بالادستی کو تسلیم کرنے کو تیار نہ ہو اور ایک آزاد اور خود مختار قوم کے طور پر زندہ رہنا، جو کہ ہر قوم کا حق ہے، وہ رہنا چاہے اور اپنے وسائل پر اپنے عوام کا حق سمجھتی ہو، نہ کہ امریکہ یا یورپ کا حق تیل پر ہو، تو جیسا کہ ایران میں پہلے ہوتا رہا اور ایران کا تیل استعمال ہوتا رہا عوام دشمن تحریکوں کو کچلنے کے لیے، تو اگر یہ تیل امریکہ کے حق میں استعمال ہونا شروع ہو جائے تو وہ حکومت جو بھی قائم ہو اس کو وہ سپورٹ کریں گے۔ لیکن وہ حکومت جو کہ امریکہ کی بالادستی کو نہیں مانتی اور صحیح طور پر نہیں مانتی، امریکہ کو کوئی حق نہیں کہ کسی ملک کے اندر جا کر وہاں وہ شرنگیزی کرتا ہو، حکومت کو الٹ پلٹ کرے، تو اس طرح کی حکومت کے قیام کے حق میں چاہے 84% لوگ آ کر ووٹ ڈالیں، وہ امریکہ کو یا اس کے جو حواری ہیں ان کو ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا۔ تو یہ مفادات کے ٹکراؤ کا معاملہ ہے، اور جمہوریت کو انہوں نے فرنٹ رکھا ہوا ہے، وہ جمہوریت جو ان کو سوٹ کرتی ہے اس کو مان لیتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا حماس کے الیکشنز کو انہوں نے نہیں مانا، یعنی پوری فلسطینیوں نے حماس کو چنا لیکن انہوں نے اس فیصلے کو نہیں تسلیم کیا، چونکہ وہ فیصلہ عوام کا، جمہور کا فیصلہ وہاں کی پینٹاگون کی جو رولنگ گروپس ہیں، کلکس ہیں، سہونی طاقتیں ہیں، ایونجلک چرچ ہے اور دیگر جو وہاں کی فورسز ہیں، جس میں تیل کے کارٹل ہے، جو اسلحے کے سوداگر ہیں، ان کو وہ الیکشن سوٹ نہیں کرتے تھے، انہوں نے نہیں مانا۔ اسی طرح ایران کے الیکشنز میں 84% لوگ آ کے شامل ہوتے ہیں، وہ اس کو دنیا میں یہ تاثر دیتے ہیں کہ ایران میں آزادی نہیں ہے، ایران میں جو الیکشنز ہیں وہ ریاستی جبر کے نتیجے میں ہوتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ سو دنیا اتنی بیوقوف اور پاگل نہیں ہے۔ امریکہ جتنا آج ایکسپوز ہوا ہے دنیا میں، غالباً اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ ख्वाह वो टंबकटू का आम आदमी हो या ब्राज़ील में रहने वाला एक आम शहरी हो, उन सब पर यह बात वाज़े हो चुकी है कि आलमी साम्राज्य जिसका सरगना अमेरिका है वो पूरे दुनिया के वसाइल को अपने कब्ज़े में करना चाहता है और इस को हासिल करने के लिए तमाम ममालिक में जहाँ पर रिच हैं वो वसाइल वहाँ पर अपनी हुकूमतें कायम करना चाहता है, और अगर वो हुकूमतें कायम नहीं हो पाती तो फिर वहाँ पर वो शरंगेजी करता है, दहशतगर्दी करता है, रियासती दहशतगर्दी करता है
जी,
और उसके बाद उस इलाके में अमन कायम नहीं होने देता। तो जमहूर का फैसला अभी, यानी जब हमने एंटी वॉर मूवमेंट लंदन में बिल्ड की थी और 20 लाख लोग लंदन की सड़कों पर आए थे अगेंस्ट द वॉर, तो जमहूर की आवाज़ को ना बुश ने सुना ना ब्लेयर ने सुना और उन्होंने जाकर इराक पर हमला कर डाला। तो जमहूर का नाम लेने वाले ये लोग डिक्टेटर्स हैं, और डिक्टेटर्स हैं अपने माशी तबके के तहफ़ के लिए। इनकी एक कैपिटलिस्ट डिक्टेटरशिप, इसको कैपिटलिस्ट डिक्टेटरशिप मैं कहूँगा, वो दुनिया पे मुसल्लत करना चाहते हैं और जमहूर की किसी बात को तस्लीम करने को तैयार नहीं अनलेस के उनके मफादात के मुताबिक जमहूर की आवाज़ हो।
जी, बहुत बहुत शुक्रिया शहबाज साहब।
जी,
साम्राज्य महाज के
जी
प्रोपेगेंडों का कोई असर
जी
यहाँ आवाम में नज़र आ रहा है?
बिल्कुल नहीं, आवाम में जो है अब तक असर ही नहीं हुआ यहाँ पर
जी, जी।
और जो है ये खुद जो है तब तक बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो है खर्च कर चुके हैं शराफत साहब। इन्होंने जो है रोज़ अव्वल से, जब भी जिस दिन जिस तारीख को इनकलाब यहाँ पर कामयाब हुआ उस दिन से लेकर आज तक जो है हर मौके पर, हर मरहले पर, खाओ सैंक्शंस हो खाओ प्रोपोगंडा हो, बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो है अमरीका खर्च कर चुका है। लेकिन असर क्या हुआ पता ही, आज तक जो है अब गुज़िश्ता जो 3 साल पहले जो इलेक्शन वगैरह हुए थे, ये जो बावर किया जाता है कि मसलन ईरान में कुछ अनरेस्ट फैला, कुछ लोग जो है बदजन थे, ये बात बिल्कुल गलत है। ईरान में सारे ईरान में भी इसका असर नहीं हुआ। तेहरान के कुछ सड़कों पर, वो भी देख लीजिए आप, चारराह वाली असर से लेकर तेहरान यूनिवर्सिटी का इलाका जो तकरीबन 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर का इलाका है, वहाँ पे कुछ शरपसंद अफराद वो वहाँ आए, आके जो है गड़बड़ वगैरह किए और जो डस्टबिन वगैरह थे जो ट्रैश कैन थे उसका आग लगाए, और CNN BBC जो हर जाविये से हर एंगल से उनकी अकबरदारी की है, फिल्मबरदारी की है और दुनिया को बताते गए कि ईरान में जो है आग लगी हुई है और ईरान के लोग आवाम से, ईरान के आवाम जो है नाराज हैं और हुकूमत के खिलाफ हैं और जो है वो कहते हैं कि जो इलेक्शन फ्रॉड वगैरह हुआ, ये धांधली वगैरह हुई, ये सो जो बात की प्रोपोगंडा है, इसका अलावा कुछ नहीं है। और आम ईरानी जो है कभी मुतासर नहीं हुआ, और अगर मुतासर होता तो जो है हुकूमत जो है कायम नहीं रहती यहाँ पे। इस बात की ये दलील है कि निज़ाम जमहूरी इस्लामी ईरान जो 33 साल से कायम और दायम है और जो है अपनी तेजी के साथ जो तरक्की करते जा रहा है, इससे अवाम के बिना, अवाम की सपोर्ट के बिना पर है। जैसा कि मैंने गुज़िश्ता गुफ्तगू में इशारा किया, वो 22 बहमन यानी 11 फरवरी के मौके पर तेहरान के सड़कों पर तकरीबन 4-5 मिलियन लोग जो है लेके आए। बताइए देखे तकरीबन तेहरान की अगर आधी आबादी भी हुकूमत की तायद में आ जाए, अब जो इसका मतलब दलील ये नहीं है कि जो दूसरी आबादी जो आधी नहीं थी वो हुकूमत खिलाफ थी, ना कोई वजूहत होते हैं, हवा सर्द है, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, औरतें हैं, हर किस्म के लोग हैं। रहा दूसरे शहरों में देख लीजिए आप, बताइए कि मुल्क में किस जगह पे जो है उस निज़ाम की, उस सिस्टम की तायद में इतने लोग एक मौके पर एक वक्त पर हिमायत करते हैं। और रहा इंतखाबात, जो इसी बात की दलील है, इंतखाबात में जो है हर मौके पर जैसा कि अर्ज किया, में खावा जो है सदारती इंतखाबात हो, खावा पार्लियामानी इंतखाबात हो, खावा किसी और किस्म के इंतखाबात हो, आवाम का आना और इस बात की दलील है कि आवाम जो है अमरीकी प्रोपेगेंडा से जो है गैर मुतासर है, बल्कि अमरीका का प्रोपेगेंडा जितना शदीद होता है ईरानी आवाम जो है उतनी शिद्दत के साथ जो है मुजाहरा करते हैं, बताते हैं कि हम इंडिपेंडेंट है। रहा इस इंतखाबात से हटकर, आप हर साल जो है रोज़े खुद का जो राह पामाई होती है, राले होते हैं उसमें देख लीजिए आप, रमज़ान मुबारक का जो आखिरी जुम्मा है, जुम्मतुल वदा है, इसको इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह ने योम खुद के नाम से जो है ऐलान किया था, डिजिग्नेट किया था। हर साल उस मौके पर भी जो है लाखों की तादाद में तेहरान और दूसरे सड़कों पर जो है निकल आते हैं तायद करने के लिए। तो बात बहुत बड़ी दलील है कि इनके ऊपर से अमरीका का प्रोपोगंडा असरअंदाज हो ही नहीं सका। اور جو ہے بات کی دلیل ہے کہ جو ہے ایرانی چاہتے ہیں کہ بالکل ایک مستقل طور پہ حکومت رہیں، اپنے پیروں پہ کھڑے رہیں، اپنے جو منابع ہیں اپنے ہی اس میں حفاظت میں رہیں، اور اس کو جو ہم بھرپور ترقی کریں اس سے. اور ہاں نیوکلیئر پرابلم دیکھ لیجیے آپ، مسئلہ دیکھ لیجیے آپ نیوکلیئر مسئلے کے بارے میں، ایران ہر قسم کا ایرانی خاص کے جو بھی خیالات ہو وہ ڈٹ کے جو ہے اس کا تحفظ وارہ کرتا ہے، تائید کرتا ہے اس کی. تو اس بات کی دلیل اگر پروپیگنڈا کا اثر ہوتا تو آج جو ہے بہت بڑی تعداد جو ہے تقریباً حکومت سے ناراض ہو جاتی، الگ ہو جاتی، علیحدہ ہوتی. فلاں اس کے باوجود بھی رہبر کی جب بھی آواز بلند ہوتی ہے لاکھوں کی تعداد میں لوگ نکل آتے ہیں. اس بات کی بہری دلیل ہے کہ امریکہ کا پروپیگنڈا بالکل بیکار ہے. امریکہ ہر جگہ پروپیگنڈا کرتا ہے. اب دیکھ لیجیے، اب چند روز پہلے دمشق میں شام میں جو ہے وہاں پہ ریفرنڈم ہوا، اور وہاں کے شام کی حکومت نے الیکٹرانک ریفرنڈم کیا، اور اس باوجود کہ وہاں پہ جو ہے کچھ علاقوں میں نامنی ہے، وہاں کی صورتحال خراب ہے، بدامنی پائی جاتی ہے، اس کے باوجود بھی 57% لوگ جو ہے شرکت کیے، جس میں سے تقریباً 80% کے اوپر جو ریفرنڈم پیش کیا گیا تھا اس کی تائید کیے، لیکن 89% جی. اور امریکہ جو ہے فوری کہہ دیا کہ جو ہے ہم کو قابل قبول نہیں ہے. اگر آپ کو قابل قبول تو کیا قابل قبول ہے؟ اچھا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ شام کی جو کرسچن آبادی ہے جو تقریباً 12 یا 15% ہے ان کی تعداد، وہ جو ہے بشار اسد کی تائید میں ہیں بلکہ امریکہ کے جو خلاف ہیں. اب اگر پروپیگنڈا کا اثر ہونا چاہیے تھا تو وہاں کے کرسچنز پہ ہونا چاہیے تھا پہلے، کیونکہ امریکہ جو ہے اپنے آپ کو ظاہری طور پہ صحیح کرسچن کہتے ہیں، حالانکہ وہ آئین عیسائیت سے بہت دور ہیں، وہ ان کو کوئی کسی قسم کا جو واسطہ و سروکاری نہیں ہے حضرت عیسیٰ کے آئین سے، مذہب سے، لیکن نام نہاد طور پہ کرسچن ہیں، لیکن ان کا اثر وہاں پر بھی نہیں ہوتا. یا جیسا کہ میں اس گزشتہ گفتگو میں کہا کہ ایران میں جو ہے ایک بہت بڑی تعداد عیسائیوں کی ہے، اور جو ہے یہودیوں بھی 25,000 کی آبادی ہے، ان یہودیوں پہ بھی آج تک اسرائیل کا اثر ہی نہیں ہو سکا، کیونکہ یہودی جو ان کے جو مذہبی رہنما ہے یا ان کے جو لیڈر ہے وہ کہتے ہیں کہ سب نے امنیت کی جگہ جو ہمارے لیے ایران ہے، اور یہاں ایران میں جو ہم کو حق و حقوق حاصل ہے وہ خود اسرائیل میں حاصل نہیں ہے. اب بتائیے اسرائیل میں بھی جو ایک مصنوعی حکومت ہے، وہاں کی عوامی حکومت نہیں ہے بلکہ یوروپ سے جو یہودی آئے تھے ان کا جو ہے قبضہ وہاں پہ ہے. اچھا وہاں کے جو اصل یہودی باشندے ہیں فلسطین مقبوضہ کے، ان کو حق و حقوق حاصل نہیں ہے وہاں پر. البتہ جو جرمنی سے یوکرین سے رشیا سے فرانس سے جو یہودی آئے ہیں حکومت انہیں کے ہاتھ میں ہے، یہاں کے وہاں جو تقریباً کئی صدیوں سے جو یہودی آباد تھے فلسطین میں ان کو خود حق و حقوق حاصل نہیں ہے. تو اس بات کی دلیل ہے کہ امریکہ کا پروپوگنڈا خود جو ہے عیسائیوں پر اور یہودیوں پر بھی جو ہے اثر انداز نہیں ہو سکا، تو ایران کے عوام پہ کہاں اثر انداز ہوگا، جبکہ ڈٹ کے مقابلہ کرنے کے لیے اسلام کے لیے اور اسلام کے آئین پہ تیار ہیں.
بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ شہباز صاحب. اسی کے ساتھ ہم علی جعفر زیدی اور شمیم فیضی صاحبان کے بھی شکر گزار ہیں. بہرحال امریکہ جمہوریت اور ڈیموکریسی کا کتنا طرفدار ہے اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ دنیا کی جتنی بھی جمہوری حکومتیں ہیں ان کے مقابلے میں امریکہ کے تعلقات آمر اور ڈکٹیٹر حکومتوں سے زیادہ اچھے ہیں. اسی کے ساتھ پروگرام انداز جہاں اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں.